तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मुखालफत ना आए, लेकिन याद रखिए ये मुखालफतें इंसान को जीना सिखाती हैं। स्ट्रगल के बग़ैर कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो इंसान उसका हक अदा नहीं करता। तस्वुर में आपके समंदर आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कभी कोई गम ना मिले, कोई आजमाइश ना आए, कोई तकलीफ ना आए? तो ज़रा अल्लामा इकबाल के अशआर तो सुनिए जो उन्होंने अपने बेटे को कहे थे। बेटा, सगा बेटा, लेकिन ज़रा जवानी का रंग देखा उसमें अल्लामा इकबाल ने, तो क्या बद्दुआ दी। कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। अब ये कोई दूसरा कहता ना, तो हम कहते तुम्हारे मुंह में खाक। अपनी सगी औलाद को कहते हैं कि मेरे बेटे, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में कोई तूफान लाए कि तेरे बाहर की मौजों में इस तराब नहीं। क्या वजह, क्यों आए तूफान? क्योंकि मैं देखता हूँ कि तेरे अंदर कोई हलचल ही नहीं है। नो डायनामिज्म, नो इनकिला, तू स्टिल स्टल हो गया। तेरी ज़िंदगी में कोई शौक नहीं, कोई जौक नहीं, तू साबित बन गया। एक और शेर भी है ना कि तुझे अपने असलाफ से क्या नस्बत हो सकती है, तू साबित वो सैयारा। वो तो दुनिया में सायहून बनकर अल्लाह का पैगाम फैलाते थे, तुम अपनी ज़मीन के साथ लग गए। अखलद इलल अर्दी, पीछे सूरत अल अराफ में पढ़ चुके हम लोग, तो क्या पता चला। कहते हैं कि तुझे कोई तूफान मिले और तेरे अंदर जोश आए, तुझे थपेड़े पड़े, हो तेरी मुखालफत, करें लोग तुझे बातें, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू। कहते तू कैसे कह सकता है कि तेरा कोर्स पूरा हो गया, तुझे इस किताब से अब कभी फरागत ना मिले। मुराद ये कि तू कभी इस मदरसे से फारिग होके ना जा, इसलिए कि किताब वहाँ है, तुझे किताब तो पढ़नी आ गई है, तर्जुमा तो याद हो गया, तेरी तजवीद तो अच्छी हो गई है, मगर साहिबे किताब नहीं। अभी तो इस किताब पे अमल नहीं कर रहा, तो अभी कान्ना कखुलु कहुल कुरान वाली कैफियत पे नहीं आया। तो अगर हम सब देखें तो इस आयत में हम सब को एक सोच दी गई कि वक्त और माशरे के रिवाज से ऑपोजिट तरफ चलने वाले ही सोसाइटीज़ की वो कश्तियाँ जो फंसी होती हैं उनको निकालने में कामयाब होते हैं। जो शख्स मुखालफत में अपने आप को जमा लेगा ना, वो बच जाएगा, वो मुफीद बन जाएगा। आप देखिए कि बास दफ़ा आप दरख्तों को देखते हैं, बल्कि आज भी मैं किसी के साथ थी, या पता नहीं कल की बात है, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए कि आम हालात में हर दरख्त खड़ा है ना, खड़े हैं, किसी को नहीं पता कि इसमें से किसकी जड़ों को दीमक लगी हुई है, किसी को नहीं पता इस दरख्त के नीचे हो सकता है सेल आ चुका है, कुछ भी है। लेकिन अगर आज शाम को एक आंधी चले तो अगले दिन सबको पता चल जाएगा कि कौन सा दरख्त मजबूत था, उसकी जड़ें पक्की थी, और कौन सा असेबजदा था या उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ गई थी। जो दरख्त आंधियों में गिर जाते हैं वो इस बात का सबूत देते हैं कि हमारी जड़ें खोखली हैं। इसी तरह एक ईमान वाले को समझिए, आम हालात में जो मैं और आप नेकियां करते हैं ना, किसी को मत गुमान रखें, कोई हमें से कोई इस पे गुमान ना करे कि हम बहुत नेक हैं, पता ही नहीं चला, अभी कोई क्राइटेरियन ही नहीं है। हम तो दूसरों के ऊपर सहारे देकर भी बाज़ दफ़ा नेक होते हैं, कुछ दूसरे ही लोग हमसे ज़बरदस्ती नेकियां करा लेते हैं, माँ ही ज़बरदस्ती कहती है चलो साथ, बाद वह घर वाले कहते जाएं आप सीखें पढ़ें। असल पता कब चलता है, जब इंसान मुश्किल हालात में उस काम पे जम जाए। एक तूफान से आप गुजर जाएं, एक आंधी आई, आपके इर्द गिर्द वाले कितने छोटे छोटे दरख्त गिर गए, आप जमे रहे, फिर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसको असल में अल्लाह ताला ने यहाँ पेश किया है। और वो क्या है, अब आयत का दूसरा हिस्सा लेते हैं, दोनों पर इकट्ठी बात करूंगी बाद में, कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह से हक और बातिल का फ़र्क बता दिया। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब एक और मिसाल ज़हन में रखिए, और अपने पेज पे अगर आप लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ इसको लिखना शुरू कर दें। वह और यानी एक और एग्जांपल है, क्या मिम्मा युकिदूना, उसमें से जो तुम तपाते हो, ये जो लफ्ज़ है ना युकिदून, हाँ, वक़दा से किसी चीज़ को पिघलाना, मेल्ट करना, अलैहि फिन्नारी, उसको आग पर, मुराद है जिन धातों को ये लोग आग पर तपाते हैं। आपको पता ना कि धात क्या होती है, इंग्लिश में बोल दें मेटल्स। जब भी मेटल से कोई काम लेना हो तो क्या किया जाता है, पहले उसको मेल्ट किया जाता है। तो कहते हैं कि लोग धातों को पिघलाते हैं, क्यों पिघलाते हैं, कहाँ पिघलाते हैं, आग पर। वाय इब्तिगा हिल्यती, उसमें से जेवरात लेने के लिए, हिलिया हुलीश जेवर को कहते हैं, ठीक है, जो हम ख्वातीन बड़े शौक से पहनती हैं। यानी जब किसी धात को पिघलाते हैं किस लिए, कि नंबर एक कि उससे जेवरात बनाए जाएं, औ मताइन, या कुछ दूसरी चीजें बनाने के लिए, मसलन हथियार बनाने के लिए, पतीलियां बनाने के लिए। लोहे से आप देखिए कि अमूमन ये चीजें बनती हैं, और सोने से अमूमन जेवरात बनते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त क्या होता है, जब उस मेटल को तेज आग पे पकाया जाता है ना, तो जबदुम मिसलुहू, इसी तरह की झाग उसके ऊपर भी आ जाती है। कभी आपने मेल्ट होती हुई कोई चीज देखी? एक चीज मैंने देखी हुई है, कभी आपने बचपन में गुड़ को पिघलाकर वो गचक सी बनाई होगी, जो ही आप गुड़ को आग पे रखते हैं ना हल्की आंच पे, तो वो पकता है, तो उसके बाद ऊपर ऊपर झाग है। और उस झाग में क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई कंकर, कोई तिनका, कोई उसमें मट्टी का जरा, वो सब ऊपर आ जाता है। और आप अगर कप चम्मच उसको ऊपर से उतारें, तो नीचे से निथरा हुआ मीठा पानी आ जाता है। यही मुराद है कि जब धातों से कुछ फायदा लेना होता है, तो धात को पिघलाया जाता है। सोना जब जेवर में ढलता है ना, तो आपको पता है कि उसको पिघलाते हैं। सोने में जितना भी खोट होता है ना, वो सब ऊपर आ जाता है, और जो असल प्योर गोल्ड होता है वो नीचे आ जाता है। का कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल हक वल बातिल, इसी तरह अल्लाह ताला हक को बातिल से टकराता है। कैसे? फामज़्ज़वदु। अब ये जो झाग थी दोनों सूरतों में, समंदर की सतह पे थी या इस धात के पिघलाने पे एक ऊपर आ गई, उससे क्या बनेगा? फयज़हबु जुफान, वो तो खुश्क होकर जाया हो जाता है। और अगर उर्दू में एक बड़ी पोइटिक जुबान बोलो ना, तो हमने एक लफ्ज़ सुना होगा, वफा के मुकाबले में जफा। जफा किसको कहते हैं? बेवफाई करना। ये जुफा वही लफ्ज़ है कि जो झाग है ना, वो तो जफा कर जाता है, किसी काम नहीं आता। कभी झाग से आपने सुना कुछ बना, वो तो मैली होती है, कुछ नहीं, वो है थोड़ी है या ज्यादा है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन वाममायनफाउन्नासा, और जो चीज़ लोगों के लिए मुफीद होती है, जो लोगों को नफा देती है, फयाम को सुफेलार, वो तह में ठहर जाती है। पहली सूरत में क्या है जो तय में रह गया? साफ पानी। और दूसरी सूरत में वो धात, वो सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जो नीचे प्योर फॉर्म में रह जाता है, वो लोगों को फायदा देता है। कज़ालिक यद्रिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है। कैसे बयान करता है मिसालें? कि इस कायनात में हक को ही सुबाता है, वो ही बचेगा जो लोगों को फायदा देगा। बात समझ रहे? ये फितरत का असूल है। आप देखिए कि हम खाना खाते हैं ना, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं। मसलन प्रोटीन मिलता है उससे, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलती है, लेकिन हमारे खाने के अंदर से कुछ एसिड्स निकलते हैं, यूरिक एसिड, फुला फुला। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि एक शख्स खाना तो खाए, तो उसके जिस्म से वेस्ट्स ना निकलें, क्या हाल हो जाता है? तबीयत कितनी बोझल होती है जब इंसान का पेट बोझल होता है और वो फारिग ना हो सके। फितरत का असूल है कि खाने में से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो जिस्म ले लेगा, जिसको जहाँ जो चाहिए। हड्डियाँ कैल्शियम ले लेती हैं हमारा, इसी तरह जिस्म की वो चीज़ें जो जहाँ चाहिए होती हैं वहाँ चलती हैं, और जो गंदगी, खराबी, एक्स्ट्रा थिंग्स हैं, वो सब जिस्म से दिन में 2 बार, 2-3 बार निकल जाती हैं। ये फितरत का असूल है, यही अल्लाह का असूल इंसानों के साथ है। वो लोग जो इस दुनिया से बगैर कोई काम किए चले जाएंगे, फयाज खबु जुफान, उनको तो कल कोई नहीं याद करेगा, बेकार थे। चूंकि अपने लिए जी रहे थे, खूब जिए, आज मरे कल दूसरा दिन, ज्यादा से ज्यादा उनकी कब्र पे जाके बच्चे रोएंगे, या शोहर रोएगा, या माँ बाप में से कोई होगा तो रो लेगा, और चंद दिन के बाद सबको सब्र आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हदीस में आता है कि जब वो फौत होते हैं, तो जमीन के वो टुकड़े भी रोते हैं जहाँ वो नेकी करते थे, और आसमान भी रोता है। आगे हम कुरान में पढ़ेंगे ये बात इंशाअल्लाह ताला, कि आसमान रोता है। कुछ लोग हैं जो ज़मीन पर रहते हैं तो कायनात उनके लिए दुआएं करती है। ये कौन से लोग हैं? वाम ममा यन्फउन्नास, जो लोगों को नफ़ा दें। आज नाम लोगों के देख लीजिए, दीन के नाम में से भी देख लीजिए और दुनिया के नाते से देखिए। हम पहले दीन की बात कर लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्यों उनका नाम बाकी है? कुछ उन्होंने लोगों को दिए, इंसानियत को दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह का दीन फैलाते रहे। हज़रत मूसा, ईसा, और सबसे बढ़ के नबी सल्लम, जिंदगियां लगा दी ना, तो आज भी उनका नाम मौजूद है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, आइमे कराम, امام بخاری، ہم جانتے ہیں اگر امام بخاری اتنی محنت نہ کرتے علم کے میدان میں، چاروں ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، کیوں آج لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، انہوں نے محنتیں کی. آج تک کبھی آپ نے کسی کو ابو جہل کے لیے روتے دیکھا؟ فرعون کی یاد میں کوئی دھاڑے مار کے رو رہا؟ کبھی نمرود کے نام پہ کوئی خیر کی بات سنی؟ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَسْخَبُ جُفَانَ، ایک پیغام ہے کہ اس سے پہلے کہ تم قبر میں جاؤ اور قبر کی مٹی تمہیں کھا جائے، کچھ کر کے جاؤ. کوئی درخت بھی اپنا بیج چھوڑنے سے پہلے دنیا سے نہیں جاتا. فطرت کا اصول ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی توفیق کے مطابق کائنات کو سرو کرتی ہے. جب تک سایہ درخت دے سکتے ہیں دیتے ہیں، جب تک آکسیجن پروڈیوس کر سکتے ہیں کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنے بیج دنیا میں اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے بعد دوبارہ ان بیجوں سے خیر پیدا ہو سکتی ہے. ہم سب اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ بابرکت کتاب پڑھ رہے ہیں. صرف اس کو ایک لیکچر نہ سمجھیں. اگر کسی جگہ کلاس میں بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، اس لذت کو کر کے دیکھیے محسوس. اب ہم کیا لے رہے ہیں اس وقت؟ دی بیسٹ تھنگ. آپ اس کو سمجھیے کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی، مثلا تھر کے علاقے یا دنان کا علاقہ افریقہ میں. جو کہ بارش رکی تو زمین کی سب خوبیاں ختم. ہم سب بھی تو اسی طرح کے نہیں تھے کل تک. کیا تھا ہماری زندگی کا مقصد؟ وجہ کیا تھی کہ ہمارے پاس یہ وحی الہی نہیں تھی؟ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی. آج آپ 13ویں پارے کی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں. یہ وحی الہی کا 13واں پارہ ہے آپ کے اوپر. تو کیا اب اس کے بعد آپ کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آنی چاہیے؟ کیا یہ کتاب ہمیں یہ نہیں سکھا رہی کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ اپنے بعد لوگوں کو فائدہ دیں؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں صرف اس شخص کو اور اس قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے. مثلا دیکھیں نیوٹن. کیوں لوگ جانتے ہیں نیوٹن کو؟ وام مما ین فوناس. ایڈیسن محنتیں کر کے گئے نا. جو انہوں نے انسانیت کو دیا، لوگ آج ان کو یاد کرتے ہیں. جو دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. تو خود سے پوچھئے، میری ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اور اگر اس کو تھوڑے سے چھوٹے سرکٹ پہ لے لیجیے ایز اے مسلم، تو میری ذات سے اللہ کے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں اپنی ذات سے اللہ کے دین کو کیا فائدہ دے رہی ہوں؟ میں نے ایک جگہ یہ سوال پوچھا سسٹر سے، ایسے بیٹھے ہوئے. شروع میں درس جب بھی ہوتا ہے تو پہلے لوگوں سے پوچھتی ہوں پھر بتاتی ہوں. تو میں نے کہا، سسٹرز آپ یہ بتائیے کہ صبح سے اب تک آپ نے کیا دین کے لیے کیا کیا؟ تو جواب بالکل میری امید کے موافق تھا. لوگوں نے وہی بتایا، صبح اٹھی، نماز پڑھی، دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھا. یعنی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ یہی سننا چاہ رہی ہیں کہ نیکی کا کیا کیا. پھر بچوں کو ناشتہ دیا، یہ وہ سب کچھ کیا الحمدللہ. یعنی سب نے جب اپنی ذاتی عبادات کی بات کی، تو میں نے کہا کہ سسٹرز آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال کیا تھا کہ آپ نے صبح سے لے کے اب تک دین کو کیا دیا؟ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو یہ آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے. اگر آپ نے صبح شام کی دعائیں پڑھی، اٹس یور پروٹیکشن. اب میرے سوال سے نا وہ ذرا کانشیس ہوئی کہ جواب اتنا آسان نہیں ہے. کہتے یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. ہم تو دین کو فائدہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، اللہ کا دین ایسے جیسے ایک بچہ. آپ امیجینیشن میں لائیں کہ کسی کا بچہ بیمار ہے، ماں کو کیا کرنا ہوگا؟ اس بچے کو گود میں لے اور اس کو دوا پلائے. کبھی آپ نے کیا کہ بیمار بچے کو دیکھا کہ اچھا تو بڑا بیمار ہے، میں دو نفل پڑھ کے آتی ہوں. بچے کو بھوک لگے گی تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا آپ اس کے لیے کچھ تھوڑا بہت جماعت کریں اور اس کو کھلائیں؟ بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں تم یہ کر رہے ہو، چلو میں جا کے ذرا ایک وظیفہ نہ کر لوں، آدھا گھنٹہ جائے نماز پہ بیٹھ کے. آج اللہ کا دین ایک نگلیکٹڈ بچہ ہے. جب تک ہم اللہ کے دین کو اپنا نیو بورن بیبی نہیں سمجھیں گے، دودھ پیتا بچہ نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آج کے دور میں دین کو ہم سے کیا چاہیے. آپ اس بات کی گواہی دیں گی کہ ماں سب سے زیادہ کانشیس دودھ پیتے بچے کے لیے ہوتی ہے. وہ بھولی بھالی لڑکیاں جو ماں کے گھر میں کبھی اٹھی نہیں بستر سے، جن کی نیند اتنی پکی ہے، وہ بچے کی چھوٹی سی چھو سے اٹھ جاتی ہیں رات کو. کس چیز نے اس سیدھی سیدھی بچی کو ایک ذمہ دار ماں میں بدل دیا؟ اس بچے کی محبت نے. पतली पतली बच्चियाँ होती हैं और इतने मोटे मोटे बच्चे उठा उठा के फिरती हैं सारा दिन। आप किसी का बच्चा थोड़ी देर लाड में पकड़ भी लें, लेकिन उसके बाद फिर आप कहते हैं अल्लाह करे ये रोए और इसको मैं दूँ माँ को। ऐसे ही है ना। आप ज़रा अपने नोट्स में लिख के देख लें कि अगर अल्लाह के दीन को आज हम एक वो बच्चे से तशबीह दें, आज इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आज अल्लाह के दीन को हम मुसलमानों के, मैं नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं करती, ज़रूरत भी कोई नहीं, आज अल्लाह के दीन के बच्चे को हम मुसलमानों से सबसे फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग जो चाहिए ना, वो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। तो बच्चा पैदा होता है तो घर वाले सारे मुंतज़िर होते हैं, क्या पैदा हुआ, मैं नाना बन गया, मामू बन गया, खाला बन गई, फूफो बन गई। आज हमने इस दीन को प्यार देना छोड़ा है ना, तो आप देखें कि ये ऐसे लगता है निगलेक्टेड किड। आज दीन के नाम पे क्यों इस तरह का तसव्वुर आता है कि बहुत रिजिड, क्योंकि जिन बच्चों को बचपन में मोहब्बत नहीं मिलती ना, वो बड़े होके बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं, कहते हैं हमें नहीं मिली हम भी नहीं किसी को देंगे। तो ख़ुद से पूछिए, क्या मुझे अल्लाह के दीन से उतनी भी मोहब्बत है जो मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है?